Hare Krishna. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Janavallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Janavallabha Girivaradhari. Yashoda Nandana Vraja Janaranjana. Yashoda Nandana Vraja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Janavallabha Girivaradhari. Yashoda Nandana Vraja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा वृंदावन विहारी राधा वृंदावन विहारी राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य शिल प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस प्रिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की व्रज भूमि वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा माई जमुना माई की भक्ति देवी श्रीमती तुलसी महारानी की कलयुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की ऑल ग्लोरियस टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरियस टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरियस टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग हिंदी हिंदी श्रीमद् भागवतम कैंटो फिफ्थ चैप्टर 11 श्लोक क्रमांक 8 गुणानुरक्तं व्यसनाय जन्तो क्षेमाय निर्गुण्यमथो मनस्यात् यथा प्रदीपो घृतवर्तिमश्नन् शीखा सधूमा भजति हन्यदास्वम् पदं तथा गुणकर्मानुबद्धं वृत्तिर्मनश्रयत्यन्यत्र तत्त्वम् गुणानुरक्तं व्यसनाय जन्तो क्षेमाय निर्गुण्यमथो मनस्यात् यथा प्रदीपो घृतवर्तिमश्नन् शीखा सधूमा भजति हन्यदास्वम् पदं तथा गुणकर्मानुबद्धं वृत्तिर्मनश्रयत्यन्यत्र तत्त्वम् गुणानुरक्तं व्यसनाय जन्तो क्षेमाय निर्गुण्यमथो मनस्यात् यथा प्रदीपो घृतवर्तिमश्नन् शिखा सधूमा भजति हन्यदास्वम् पदं तथा गुणकर्मानुबद्धम् वृत्तिर्मनश्रयत्यन्यत्र तत्त्वम् हरे कृष्ण प्रभुजी माताजी हरे कृष्ण वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन गुण अनुरक्तम भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रति आसक्त होकर व्यसनाय भौतिक संसार में बद्ध होने के लिए जंतो जीवात्मा के क्षेमाय अंतिम कल्याण के लिए नैर्गुण्यम भौतिक प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहकर अथो इस प्रकार मनः मन स्यात् हो जाता है यथा जिस प्रकार प्रदीपः दीपक घृतवर्तिम घी के अंदर रखी बत्ती अश्नन जलकर शिखा ज्वाला सधूमा धुए से युक्त भजती भोगती है ही निश्चय ही अन्यदा अन्यथा स्वम अपने मूल पदम पद तथा उसी प्रकार गुण कर्म अनुबद्धम प्रकृति के गुणों तथा भौतिक कर्मों से बद्ध वृत्ति ही नाना प्रकार के कार्य मनः मन श्रयते शरण लेता है अन्यत्र अन्यथा तत्वम अपनी मूल स्थिति की। भाषांतर एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जब जीवात्मा का मन भौतिक जगत की इंद्रिय तृप्ति में लीन हो जाता है तो उसे जीवन बंधन तथा भौतिक अवस्था के कष्ट प्राप्त होते हैं, किंतु जब मन भौतिक आनंद से अनासक्त हो जाता है तो वह मुक्ति का कारण बनता है। जब दीपक की बत्ती से ठीक ठीक लव नहीं उठती तो दीपक पर कालिग लग जाती है, किंतु घी से परिपूर्ण होने पर यह ठीक से जलता है और प्रज्वलित प्रकाश निकलता है। इसी प्रकार जब मन भौतिक इंद्रिय तृप्ति में संलग्न रहता है तो इससे कष्ट प्राप्त होते हैं, और जब यह उनसे विरक्त हो जाता है तो कृष्ण भावनामृत का मूल प्रकाश निकलने लगता है। तात्पर्य, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि मन ही इस जीवन तथा मुक्ति का कारण है। मन के ही कारण प्रत्येक प्राणी कष्ट उठा रहा है, अतः यह आवश्यक है कि मन को ठीक से प्रशिक्षित किया जाए या भौतिक आसक्ति से इसे विमल करके ईश्वर की सेवा में लगाया जाए। इसे ही आध्यात्मिक वृत्ति कहते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में इस प्रकार हुई है, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण रूप से मेरी भक्तिमय सेवा में लगा हुआ है और किसी भी स्थिति में उससे गिरता नहीं, वह तत्काल भौतिक प्रकृति के गुणों का लंघन करके ब्रह्म स्तर तक पहुंच जाता है। हमें अपने मन को पूर्णतया कृष्ण भावना भावित कार्यों में लगाना चाहिए, तब यह हमारे लिए मुक्ति का और परम धाम वापस जाने का कारण बन जाएगा। किंतु यदि हम मन को इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्यकलापों में लगाए रखेंगे तो यह अविरत बंधन का कारण बनेगा और हमें इस भौतिक जगत में विविध देह धारण करने के लिए और अपने विभिन्न कार्यों में फल भोगते रहने के लिए बाध्य करेगा। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो सभी भक्तों का प्रातःकालीन इस श्रीमद् भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत। तो सबसे पहले आप सभी के आशीर्वाद की याचना करूंगा कि यहाँ इस श्लोक पे ऊपर मैं कुछ बता पाऊँ। वैसे तो राधा मदन गोपाल प्रभु जी की कृपा है कि उनसे ही हमने पढ़ा है, उनसे ही समझा है और उनकी आदेशानुरूप हम यहाँ कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे आज की कक्षा में। तो प्रसंग है भरत महाराज पूरे राज्य का त्याग करते हुए भगवत धाम वापस जाने के लिए तपस्या करते हैं, लेकिन एक हरिण के ऊपर आसक्त होकर उनका पतन होता है। फिर हम देखते हैं कि कैसे वह फिर हरिण का ही देह प्राप्त करते हैं और उनको पिछले जन्म का सब कुछ याद होते हुए फिर वो अपने मन को भटकने नहीं देते और हरिण के शरीर में भी क्या करते हैं, अपना ध्यान अपना मन भगवान के ऊपर जमाए रखते हैं और फिर उस देह को छोड़ने के बाद उनको एक ब्राह्मण अंगिरा कुल में ब्राह्मण कुल में उनका जन्म होता है और फिर वह जाने जाते हैं जड़ भरत के नाम से और अपना जीवन यापन करते करते वो इस तरह से मतलब अवधूत की भांति वो अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि उनको पिछला जन्म याद है कि कैसे उनका मन त्रिगुणों से आसक्त हुआ और फिर उन्होंने अपना मनुष्य जीवन गवाया, तो फिर वो उसे दोहराना नहीं चाहते, इसीलिए अवधूत के भांति वो रहते हैं। मतलब कभी वस्त्र पहनते हैं, कभी पहनते नहीं, कभी स्नान करते हैं, कभी करते नहीं। बहुत बार हम मतलब स्नान मतलब हम शौच विधि करने के लिए जाते हैं तो जाने आने के बाद हम हाथ वगैरह धोते, वो उधर जाने के पहले धोते थे, मतलब वो उनका पूरा कार्यकला भी अलग था। तो समाज से और इंद्रियों विषयों से अनासक्त रहना चाहते थे, इसीलिए वो उस तरह से बर्ताव कर रहे हैं। अपने उनके माता पिता है, वो चाहते थे कि वो शास्त्र पढ़े, लेकिन वो उस तरह से बर्ताव नहीं करते थे। उनके माँ बाप गुजर जाने के बाद उनके भाई उनको फिर खेत के कामों में लगा देते हैं, फिर हम देखते हैं कि किस तरह से उनको फिर वो काली माँ को उनको बलिदान देने के लिए लेके जाते हैं, फिर उनका संरक्षण वहाँ होता है और फिर प्रसंग आता है कि रघुगण महाराज की जो पालकी है वो जब ले जाते हैं तो उनके जो भोए होते हैं उनके लिए किसी की सहायता की जरूरत थी, तब ये धट्टा कट्टा नवयुवक जिसे हम जड़ भरत के नाम से जानते हैं वो उनसे मिलता है और फिर वो जो भी स्थिति है उसके अनुरूप उसको ढाल लेते थे। तो जैसे वो कह रहे थे उन्होंने वो पालकी को संभाल लिया, लेकिन उस दिव्यावस्था में स्थिर थे कि जब रास्ते में चींटी आती थी तो रुकते थे, उसको जाने के बाद फिर वो चलते थे। कोई भी कीटक मुंगी हो तो उसको बचाने के लिए वो अलग अलग तरह से चलते थे। तो इस वजह से रघुगण महाराज परेशान होते हैं और फिर उनको डांटते हैं और फिर जड़ भरत और रघुगण महाराज का जो संवाद है उसमें फिर रघुगण महाराज को उपदेश देते हुए इस श्लोक का वर्णन आता है जिसमें मन के बारे में विशेषतः जड़ भरत महाराज को बताते हैं कि अगर हमारा मन त्रिगुणों से आसक्त है तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो जिसके और इस श्लोक में एक श्लोक आता है गुणानुरक्तम अनुरक्तम, अगर हम त्रीण गुणों से अनुरक्त हैं तो हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे, और उसके विपरीत शब्द है नैर्गुण्यम, हम इस त्रिगुणों से परे हैं तो हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे और हमारा जो परम ध्येय है भगवान के धाम वापस जाना उसको हासिल कर सकते हैं। जैसे विष्णु पुराण में वर्णन आता है मनैव मनुष्यानां कारणं बंधमोक्षये बंधाय विषयासंगी मुक्तेर निर्विषय मनः, अगर हम इस मन को अच्छी तरह से नियंत्रित करके अगर भगवान के धाम वापस जाने के लिए उसको व्यतीत करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा मित्र है या मुक्ति का साधन है, अन्यथा वो बंध का कारण है। जैसे भगवान भी गीता में अर्जुन को क्या बताते हैं, निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, अर्जुन आप त्रिगुणों से परे हो जाओ, क्योंकि हम देखते हैं कि जब तक हमारा मन इस त्रिगुणों से युक्त रहेगा हम भगवान का नाम रूप कथा लीला उसका आस्वादन नहीं कर पाएंगे। शास्त्र बताता है जैसे हम 2 साल पहले सभी लोग कोविड के बीमारी से गुजर रहे थे और देखा कि उसका एक लक्षण था कि कुछ भी खाया तो हम उसका स्वाद नहीं ले सकते थे, हमारी टेस्ट ही जीवा की मतलब उस बीमारी में चली जाती थी। तो उसी तरह से हम त्रिगुणों से आसक्त है तो हमारी जो भगवान की कथा नाम रूप लीला में हमारी रुचि नहीं रहेंगे। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं कि न्याय त्रिगुण्य भवा अर्जुनों, कि आप त्रिगुणों से बाहर आइए। तो अर्जुन हम देखते हैं कि अर्जुन एक समय ऐसा था कि जब महाभारत में प्रसंग आता है कि विराट नगरी में जब अज्ञात वास में जब सभी पांडव रह रहे थे, तो जब महाभारत का युद्ध हुआ तो वही भीष्म कर्ण द्रोण सभी वही थे, और जब विराट नगरी में पांडव रह रहे थे तो अर्जुन वही अर्जुन जिन्होंने अकेले सबको परास्त किया था। हालांकि उनका शरीर क्षत्रिय शरीर भी नहीं था उस समय, वो शाप की वजह से उनको क्या बोलते हैं यूनक को क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे हाँ, तो उस शरीर वो शरीर था, उतना शरीर भी उनका वो क्षत्रिय शरीर नहीं था, लेकिन फिर भी वो अकेले सबको परास्त कर देते हैं। और जब वही प्रसंग आता है, वही सैन्य वही वीर योद्धाएं उनके सामने होते हैं, लेकिन तब उनकी मानसिक स्थिति हृदय दौर्बल्यम वो कहते हैं वो उस तरह से नहीं थी, वो शोक में थे, विवंचना थी, मन उस तरह से नहीं था, उतना दृढ़ नहीं था। वही अर्जुन वही गांडी सब कुछ वही, लेकिन उससे पहले उन्होंने सबको परास्त किया था, लेकिन अब तैयार नहीं थे। क्यों? तो उनका मन वो तैयार नहीं था, वो मन ही एक है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि नैस्त्रिगुण्य भवा अर्जुन। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि शरीर मन और आत्मा ये अलग है बहुत। तो इसीलिए तो अर्जुन को सब मतलब भगवद्गीता अध्याय दूसरा है जिसमें श्लोक क्रमांक 11 से लेकर 30 तक आत्मा के बारे में बताते हैं कि आप जो रियल सेल्फ डिफरेंट फ्रॉम माइंड, अंग्रेजी में कहते थे कि जो हम स्व है वो मन से अलग है। तो हमें सबसे पहले यह समझना होगा, मतलब हम अपना जीवन यापन करते हुए देखते हैं कि हम हमारे अस्तित्व के चार अवस्था से हमेशा गुजरते हैं। जैसे एक अवस्था होती है जिसे हम कहते हैं कि जागृति, दूसरी अवस्था है स्वप्न, तीसरी अवस्था है सुषुप्ति, और चौथी अवस्था है जिसे शास्त्र तुरीय के नाम से या जो समाधि अवस्था है। तो जैसे देख पाते हैं कि जागृति की अवस्था में हमारा शरीर कार्य कर रहा है, हमारा मन भी कार्य कर रहा है, लेकिन हमारी अगली अवस्था है जो स्वप्न अवस्था है, वह कब अनुभूति करते हैं उसकी? जब हम सोए हुए रहते हैं। तो निद्रित अवस्था में बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा शरीर कोई भी कार्यकलाप नहीं करता, लेकिन हम सपना देखते हैं, बहुत जगह सपने में घूम आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन जागृति की अवस्था में है। लेकिन सुषुप्ति ये जो अवस्था है उसमें मन और शरीर दोनों डीप स्लीप में है। तो कभी कभी हम फिर सुबह उठते हैं और बोलते हैं आज मैंने बहुत दिनों के बाद डीप स्लीप का अनुभव किया, ऐसे कहते हैं। और जो चौथी अवस्था है वो अलग है, लेकिन इसको हम साधारण अपनी दैनंदिन भाषा में अगर हमारे पास मोबाइल है तो हम बहुत यूज्ड टू है इससे, तो समझ सकते हैं कि मोबाइल अगर हमारा अच्छी तरह से चल रहा है तो उसमें हमारे सभी जो ऐप्स होते हैं वो भी चलते रहते हैं, और एक घड़ी भी है वो भी चलती रहती है जो हमें समय बताती है, तो सब कुछ ठीक है। तो वो जागृति की अवस्था है मोबाइल की, समझ सकते हैं। और जब हम इसी मोबाइल को फ्लाइट मोड में अगर डालेंगे तो क्या होता है? सभी ऐप बंद होंगे लेकिन क्लॉक चालू रहता है, घड़ी चालू रहती है, टाइम देख सकते हैं फ्लाइट मोड में भी, वो देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। लेकिन अगर इसी मोबाइल को हम स्विच ऑफ कर देंगे तो घड़ी भी नहीं देख सकते और कुछ मोबाइल के कार्यकलाप चालू भी नहीं है। लेकिन अगर समझो हमने रात के 10 बजे मोबाइल को स्विच ऑफ किया और सुबह 3:30-4 बजे अगर उसको ऑन किया और टाइम देखा तो क्या मिलता है? टाइम क्या होता है? 3:30 बजे। लेकिन तार्किकता से देखा जाए तो 10 बजे अगर उसको पूरा स्विच ऑफ किया है तो टाइम 10 ही दिखाना चाहिए, लेकिन कुछ तो ऐसा उसके अंदर चल रहा है जिसकी वजह से सुबह जब उसे ऑन करते हैं तो 4 बजे 3 बजे का टाइम दिखाता है। उसी तरह से हम इस साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं कि हम मन नहीं है, क्योंकि मन सोया हुआ है, डीप स्लीप में है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छी नींद आई। तो मन से कोई तो अलग है जो इसका मार्किंग रख रहा है, ठीक है। तो हम, लेकिन मन, फिर हम समझ सकते हैं कि हम जो सेल्फ, हमारा जो स्व है वो आत्मा है। तो मन से आत्मा अलग है, शरीर मन और आत्मा। लेकिन हालांकि आत्मा क्या है, जैसे हम कठोपनिषद में देखते हैं कि आत्मानम रथिनम विद्धि, मतलब आत्मा उस रथ पे सवार है। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, बुद्धि सारथी है। मन प्रग्रहमेव च, मन लगाम है, और जो घोड़े हो इंद्रिया हैं। तो वास्तव में भगवान इस मन के बारे में क्या कहते हैं, तो भगवद गीता अध्याय 7 में वर्णन आता है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। मतलब भगवान की जो 8 प्राकृतिक शक्तियां हैं उसमें मन है, तो मन ही हालांकि भगवान की शक्ति है और जो आत्मा द्वारा वास्तविकता से संचालित किया जाता है। लेकिन हम देखते हैं जैसे कार और ड्राइवर हैं, तो हालांकि ड्राइवर के बिना कार नहीं चल सकती, लेकिन कार एक माध्यम है जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो वही शरीर तो हम हर योनि में बदलते हैं, लेकिन जो आत्मा का कवरिंग है, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार, वो नहीं बदलता। जब तक हम गोलोक धाम तक नहीं पहुंचेंगे वह सेम है। इसीलिए वो मन को उस तरह से प्रशिक्षित करना जरूरी है, उसे त्रिगुणों से ऊपर उठना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो हमारा अगर शत्रु बना रहा। तो ऐसे भगवद्गीता अध्याय 6 अध्याय में श्लोक क्रमांक 5, 6 और 7 में वर्णन आता है इसी के बारे में। जैसे भगवान वहां बताते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानम् वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मनः। मतलब हमारा मन जो है शत्रु भी है या मित्र भी है, अगर मन से हम हमारा उद्धार का मार्ग अगर ले लेते हैं तो हमारा परम मित्र है, अन्यथा अगर वो विषय में आसक्त है तो हमारा परम शत्रु है। इसलिए मन को हमें मित्र बनाना चाहिए। ऐसे आगे कहते हैं कि बंधुरात्मनात्मनस्तस्य एनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अगर हम मुक्ति के मार्ग में मन का सहाय मिलता है तो हमारा मन सबसे परम मित्र है, और अगर हमें वो इंद्रिय विषयों में लिप्त कर देता है तो हमारा परम शत्रु है। जैसे हम देखते हैं कि हिरण्यकशिपु क्या नहीं था उसके पास, सभी ब्रह्मांड के सभी चीजों पर उसका नेतृत्व था, प्रभाव था, लेकिन एक चीज उसका पुत्र, उसका प्रह्लाद, उसके आदेशानुसार नहीं कुछ कर पाता था। तो उस एक चीज से, मतलब हम जब देखते हैं कि से ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन वर्णन आता है कि नारद मुनि जैसे संत भी हिरण्यकशिपु के अनुसार उस समय उनका जीवन यापन था। जैसे वेण महाराज के प्रसंग में हम देखते हैं कि ब्राह्मण उनको उनका अंत कर देते हैं, उतने क्षत्रिय होने के बाद भी वेण महाराज को उनका अंत कर देते हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु उसके लिए तो स्वर्गीय स्थिति हमेशा बनी हुई थी, लेकिन उसका मन कि नहीं मेरा पुत्र मेरा सुन नहीं रहा। तो वो एक चीज से उसने खुद के लिए क्या किया, एक नारकीय स्थिति उत्पन्न की, फिर उसका विनाश हो गया। उसके विपरीत हम श्रीमद् भागवतम में अवंती ब्राह्मण की स्थिति जानते हैं, उसके लिए तो पूरी स्थिति नारकीय थी, मतलब सब परिवारजन उनका त्याग कर देते हैं और उनके ऊपर मल मूत्र सबका उनको उनके ऊपर फेंका जाता है, लेकिन उस अवस्था में भी उनका मन भगवान के ऊपर जब केंद्रित हुआ तो वो नारकीय स्थिति भी उनके लिए स्वर्गवत थी। तो इसीलिए चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि अगर हमारा मन दुष्ट है, एक सुंदर श्लोक है, आप मेरे पीछे उसको दोहरा सकते हैं, मन दुष्ट हैले नहे कृष्ण रस्मरण, కృష్ణ స్మృతి వినహయ నిష్ఫల జీవన మన దుష్ట హైల నహే కృష్ణేర స్మరణ కృష్ణ స్మృతి వినహయ నిష్ఫల జీవన మతలబ్ అగర్ హమారా మన దుష్ట హై ఉస్మే కామ క్రోధ లోహ లోభ మోహాది సభీ చీజే అగర్ ఉస్మే ఠూస్ ఠూస్ కే భరి హై దుష్ట హై తో కృష్ణ స్మరణ నహీ హో సక్తా తో ఔర్ కృష్ణ స్మృతి వినా నిష్ఫల జీవన అగర్ కృష్ణ స్మృతి చైతన్య చరిత్రామృత కీ శిక్ష హై జైసే ఏక్ సుందర్ కథా ఆతీ హై పద్మ పురాణ మే సుశీల నామ కా ఏక్ బ్రాహ్మణ థా ఉస్కే దో పుత్ర థే ఏక్ సువృత్త ఔర్ దూసరా వృత్త तो पूरे भारत भर तीर्थयाटन करने हेतु वो निकलते हैं और एक समय वर्षा ऋतु का ही समय था जन्माष्टमी का प्रसंग था और तीर्थाटन करते हुए वो प्रयाग क्षेत्र में पहुंचते हैं और वहाँ फिर उनको पता चलता है कि बिंदु माधव नाम का एक मंदिर है वहाँ जन्माष्टमी का महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाने वाला है तो फिर एक दूसरे से विचार विमर्श करते हुए वे सोचते हैं कि हम तीर्थाटन तो कर रहे हैं लेकिन इस शुभ अवसर पे अगर हम इस तीर्थ क्षेत्र में प्रयाग में हैं तो हमें बिंदु माधव मंदिर में जन्माष्टमी का जो महोत्सव है उसमें सहभाग लेना है और ये जो सुवर्ण संधि है वो प्राप्त करनी है फिर लेकिन बहुत घनघोर वर्षा हो रही थी तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से हम उस मंदिर तक पहुंच पाए बहुत थके हुए भी थे तीर्थाटन करते करते वो थके थे लेकिन दृढ़ इच्छा की वजह से वो घनघोर वर्षा का सामना करते हुए निकल पड़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता एक जगह ऐसी आ जाती है अपने शारीरिक क्लेशों के कारण जो सुवृत्त है वो चल नहीं पाता और वृत्त को बताता है कि भाई अभी मेरे से नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा शरीर साथ नहीं दे पा रहा और ये नैसर्गिक परिस्थिति इतनी प्रतिकूल है कि मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगा तो मैं आसपास देखते हैं कि अगर कोई ठहरने की जगह है तो मैं वहाँ ठहर जाता हूँ तो देखते हैं वहाँ एक ऐसी जगह थी लेकिन वो बहुत ही अपवित्र जगह थी जहाँ युवक युवतियाँ काम क्रीड़ा में लिप्त रहती थी तो ऐसी जगह थी जहाँ थोड़ा विश्राम कर सकते थे तो फिर वृत्त बोलता है मैं ऐसी जगह नहीं ठहरूंगा मुझे जाना है आपको चाहिए तो आप ठहरिए लेकिन खुद का थोड़ा ख्याल रखिए मैं जाता हूँ फिर उस प्रतिकूल परिस्थिति में वृत्त जो है वो सभी नैसर्गिक आपत्तियों का सामना करते हुए क्या करते हैं उस बिंदु माधव मंदिर में पहुँचते हैं जहाँ जन्माष्टमी की पूर्व तैयारी हो चुकी थी अभी महोत्सव चालू होने वाला था अभिषेक चालू होने वाला था तो वहाँ पहुँचा सम्मिलित हुआ अभिषेक चल रहा है और तभी उसके मन में विचार आया कि मेरा भाई सुवृत्त वो उधर रुका है वो जगह कौन सी थी अपवित्र थी लेकिन वहाँ तरुण और तरुणी एक दूसरे के साथ आनंद ले रहे थे तो फिर उसका मन उधर चला गया और सोचने लगा अभी भगवान के विग्रह सामने है अभिषेक है कथा चल रही है प्रणाम कर रहा है सब कुछ आध्यात्मिक कार्यकलाप वो कर रहा है लेकिन मन में सोच रहा है किसके बारे में सुवृत्त के बारे में क्या रे अभी वो तो अंदर गया होगा वो भी युवतियों के साथ शायद अपनी थकावट दूर कर रहा होगा इस तरह से वो इस इंद्रिय तृप्ति के विषयों के बारे में सोचने लगा मंदिर में होते हुए वैसे तो एक तरह से देखा जाए तो हमारी प्रवृत्ति को एक तरह से प्रकाशित करते बहुत बार हम सब मंदिर में होते हैं होते हुए नहीं रहते क्योंकि मन अलग अलग विचारों में हमारा काम मतलब चैंटिंग में तो हम डेली फेस करते हैं ये कि मतलब रोज का अनुभव है कि हमें जब चैंटिंग करने शुरू करते तभी हमारे सभी काम उसकी पूरी लिस्ट वो सब याद आती है उसी तरह से हमारा सबका अनुभव है इस बारे में लेकिन सुवृत्त के बारे में सोच रहा है था वृत्त कि अभी वो तो बहुत आनंद ले रहा होगा और उसके विपरीत जो सुवृत्त है वो सोच रहा है कि शायद इस शारीरिक क्लेशों से परे होकर मैं भी अगर मेरे भाई का सहारा लेते हुए अगर मंदिर में जाता तो मैं भी उस कथा कीर्तन अभिषेक और जन्माष्टमी महोत्सव का आनंद ले पाता। कितना सौभाग्यशाली है मेरा भाई कि जो प्रतिकूल परिस्थिति होते हुए भी गया, बहुत सौभाग्यशाली है। तो वो उसके सौभाग्य के बारे में सोच रहा था, मतलब उस अपवित्र जगह वो मन से किधर था, बिंदु माधव मंदिर में था, और भाई के सौभाग्य के बारे में और जो भी वहां उपस्थित रहे होंगे उनके सौभाग्य के बारे में सोच रहा था। और दूसरे दिन सुबह जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो अचानक वो वातावरण उस समय अच्छा नहीं था, तो एक बिजली चमकती है और वो बिजली वो दोनों के ऊपर गिरती है और दोनों का देहांत हो जाता है। और देहांत होने के बाद जो वृत्त है उसको लेने के लिए यमदूत आते हैं और जो सुवृत्त है उसको लेने के लिए विष्णुदूत आते हैं। तो जैसे हमने अजामिल आख्यान में विष्णुदूत और यमदूत का संवाद सुना है, उसी तरह से यहां सुवृत्त विष्णुदूतों से बताता है कि आप मुझे वैकुंठ लेके जा रहे हैं लेकिन मैं मेरे भाई से आज तक कभी अलग नहीं रहा हूं। तो लेकिन उसको तो यमदूत लेके जा रहे हैं और हालांकि कल रात को ही वो इस तीर्थ क्षेत्र में बिंदु माधव मंदिर में कितना प्रयास करते हुए उसने वो सब पुण्यशाली कार्य किए हैं, भगवान का अभिषेक कथा कीर्तन सबका आस्वादन किया है और मैं इस अपवित्र स्थिति में था लेकिन आप मुझे लेके जा रहे हैं, ऐसा क्यों, मैं मेरे भाई के बिना नहीं जा सकता। फिर वो विष्णुदूत उनको बताते हैं, तो मैं थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा कि किस तरह से वो मानसिक रूप में हालांकि उस आध्यात्मिक चेतना में नहीं था। और आप क्यों भगवत धाम जा रहे हैं, क्योंकि आप इस विपरीत स्थिति में होके हुए भी आपका मन वो पूरी आध्यात्मिक कार्यकलापों में व्यस्त था। और फिर सुरुत तो बोलते हैं लेकिन कोई तो उपाय होगा कि जिससे मेरा भाई मेरे साथ आ जाए, उस नारकीय स्थिति से उसका उद्धार हो जाए। तो फिर विष्णुदूत बताते हैं कि आपने पिछले जन्म में माघ मास में इस प्रयाग क्षेत्र में मानसिक स्नान किया था, उसका पुण्य आप उस वृत्त को दे सकते हैं जिसके उसका उद्धार होगा। तो देखो मन की शक्ति, मानसिक स्नान, कभी कभी हम प्रत्यक्ष रूप में भी गंगा तीर्थ क्षेत्र में स्नान करते हुए हमारा मन उसमें स्नान करता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो मानसिक स्नान का पुण्य दिया फिर उसका उद्धार हुआ। तो ये मन की शक्ति कितनी है, मतलब हम हर बार हमारे शरीर के बारे में सोचते हैं लेकिन मन तो उससे ज़्यादा शक्तिशाली है, मतलब दिखता नहीं है लेकिन शक्तिशाली है। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी इमारत रहती है वो ऊपर बहुत बड़ी है दिखता है लेकिन उनका फाउंडेशन दिखता नहीं, लेकिन वो फाउंडेशन के ऊपर है। गुरुत्वाकर्षण दिखता नहीं लेकिन उसका महत्व है, हवा दिखती नहीं लेकिन वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो मन अच्छी तरह से भगवान के ऊपर केंद्रित करना, क्योंकि हमने देखा इस कथा से हम देख रहे हैं कि मन की शक्ति कितनी प्रबल है। मन हमारा शत्रु भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है, अगर मित्र है तो उद्धार का माध्यम है। इसीलिए रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, तस्मात् केनो उपायेन मनः कृष्ण निवेशयत्, कि मन कृष्ण के ऊपर हमें एकाग्र करना है लेकिन हम नहीं कर पाते, यही चिंता है क्यों नहीं कर पाते। जैसे हमारे ईश्वर गोपालपुर मेरे सामने बैठे हैं, कल वो लैपटॉप लेके बैठे तो मुझे इससे याद आ गया कि वो क्या कर रहे थे, आप फॉर्मेट कर रहे थे या उसको रीसेट कर रहे थे। तो मैं थोड़ा कल मुझे बताना है ऐसे उनसे बात कर रहा था कि मैं थोड़ा मंदिर में प्रवचन देना है और मन के ऊपर देना है, इतना विचलित मन और मन के ऊपर बोलना मेरे लिए बहुत मैं सोच में पड़ गया था। तो उनसे डिस्कस कर रहा था, उसी समय वो लैपटॉप को रीसेट कर रहे थे, चल नहीं रहा, बहुत स्लो हो गया है, इससे वो परेशान थे। तभी मैं सोच रहा था, कह रहे वैसे ही, मतलब हम बहुत सारा वायरस हो जाता है, बहुत सारे बग्स होते हैं लैपटॉप में तो वर्क नहीं करता। उसी समय मेरे दिमाग में आया कि उसी तरह हमारा मन भी है, जब हम बहुत सारे गलत धारणाओं से प्रदूषित होता है, किसी के प्रति द्वेष है, काम है, लोभ है, ये सब होते हुए ये स्लो हो जाता है, नहीं चल पाता, सकारात्मक धारणा वो ग्रहण नहीं कर पाता, नकारात्मक चिंतनों में रहता ही है। तो जैसे सकारात्मक और नकारात्मक मन, इसके ऊपर बहुत सारी किताबें हुई है और मन के ऊपर भी बहुत सारे साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारी मन की स्थिति होती है। जैसे कल मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था आइसबर्ग थ्योरी, तो उसमें कैसे हमारा कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है। फिर ईश्वर गोपाल प्रभु को बोला, ये साइड में रख देता हूँ, मन के बारे में जो भगवान ने बोला है उतना ही कहेंगे, ये इसके बारे में नहीं कुछ बोलेंगे। तो ये जो हमारा मन है, मतलब उसके ऊपर बहुत सारे स्टडी कर रहे, भगवान ने ऑलरेडी हमें सब बताया है। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि जब तक सकारात्मक भावना नहीं होती तो मन कितना शक्तिशाली है। जैसे मेडिकल साइंस में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, और एक सत्य घटना के आधारित ऊपर एक किताब है जिसमें एक वर्णन आता है कि किसी एक पेशेंट को कैंसर के ट्यूमर थे, सत्य घटना है। डॉक्टर को पता है कि अभी ये जीने वाला नहीं है, लेकिन कहीं से एक न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल पढ़ता है कि इस तरह का जो कैंसर है अभी उसके ऊपर संशोधन हो रहा है, ये दवा, लेकिन अभी तक वो मार्केट में नहीं आई, लेकिन उससे ये कैंसर ठीक हो सकता है। तो फिर वो मरने वाला आदमी, डॉक्टर को पता है कुछ ही दिनों में वो मरने वाला है, तो डॉक्टर के पास जाता है, वो आर्टिकल दिखाते कि ऐसी दवा निकली है, कुछ भी करो मेरे लिए इसे मंगाओ, मेरे लिए मंगाओ। अभी डॉक्टर तो हमेशा हमें क्या करते हैं, प्रोत्साहन ही देते हैं, सकारात्मकता ही देते हैं कि नहीं आप थोड़ा धीरज रखो, हो जाएगा हो जाएगा। तो अभी डॉक्टर सोच में पड़ गए कि कैसे करूं, लेकिन ठीक है वैसे तो मरने वाला है, फिर उसके अंदर सकारात्मकता क्यों ना डालो, ठीक है मैं कुछ करता हूं, देखता हूं, मंगाता हूं। फिर उसने कुछ तो किया, एक ऐसा दवा जो है उसको पता नहीं, किसी को पता नहीं कि ये दवा वो दवा है, उस नाम की तरह से उसको दे देंगे, फिर देखते हैं क्या होगा। फिर एक कोई दवा डॉक्टर ने बोला कि मैंने बहुत प्रयास, मेरे सभी कॉन्टैक्ट्स जो है वो लगाए और ये दवा जो है मंगाई है, तो इसे आप ग्रहण कीजिए। तो फिर उस सकारात्मक मानसिकता से वो दवा ग्रहण करते रहता है, और फिर कुछ दिनों में आता है तो डॉक्टर आश्चर्यचकित रहते हैं कि उसका जो कैंसर वो ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। तो ये उसकी मन की शक्ति थी, सकारात्मक मन की शक्ति थी कि जिसके कारण वो जो बीमारी है उससे ऊपर उठ रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि एक आर्टिकल आ गया कि जो वैज्ञानिक इस दवा के ऊपर संशोधन कर रहे हैं वो हालांकि इतनी कारगर नहीं हो सकती, और फिर वो सोच में पड़ गया, अरे मैं तो दवा ले रहा हूं लेकिन वो इतनी कारगर नहीं हो सकती, ऐसा कैसा। फिर वो नकारात्मक भावना में चला जाता है और उसका ट्यूमर बढ़ने लगता है। फिर डॉक्टर भी आश्चर्यचकित होते कि ऐसा कैसे, अभी तो ये ठीक हो रहा था, फिर क्यों ये क्या हो रहा है। फिर बोलते कि नहीं नहीं मैंने पता किया, ठीक ऐसा बोले है ना, उन्होंने तो कुछ बताया नहीं ना, तो मैं थोड़ा सा आपको ये दवा और कॉन्सेंट्रेट करके दे देता हूँ। फिर दिया, फिर उसका ट्यूमर थोड़ा थोड़ा चलते जाए। फिर एक आर्टिकल आया कुछ दिनों के बाद, उसमें लिखा कि ये दवा जो वैज्ञानिक कर रहे हैं फेल है। जैसे हमारा चंद्रयान 2 फेल हुआ और कल परसों चंद्रयान 3 पता नहीं फेल होगा कि चालू, मतलब क्या होगा। तो वो आर्टिकल पढ़ा उसने कि ये दवा इस बीमारी के ऊपर लागू नहीं। फिर उसका ट्यूमर इस तरह से बढ़ने लगा कि कुछ ही दिनों में वो खत्म हो गया। मतलब इसमें इस वर्णन से मुझे समझ में आया कि पेशेंट दो तरह के रहते हैं, एक जो जीना चाहते हैं और एक मरना चाहते हैं। बराबर, पेशेंट की दो ही कैटेगरी है। तो इस तरह से हम सकारात्मकता से हम अगर हमारी स्थिति है तो ये सकारात्मकता हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तो इस श्लोक में बताया कि हम त्रिगुणों से हमें परे होना है, मुक्त होना है। तो इसके लिए जो हेल्दी माइंड होना बहुत जरूरी है। तो हेल्दी माइंड कैसे होगा, बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंने बताया कि लैपटॉप अगर अच्छी तरह से करना है तो उसको सब निकालना पड़ता है, फिर फॉर्मेट करना पड़ता है, उसको जो भी हार्ड डिस्क फुल हुई है उसको फिर डिलीट मारना पड़ता है। तो उसी तरह से पहले हमारे इतने जन्मों के संस्कार हैं, कुसंस्कार बोलेंगे, उसकी वजह से हम हमारी साधना ठीक तरह से नहीं कर पाते। तो हमें हमारा मन जो है वो खाली करना पड़ेगा, क्योंकि हम फिर वो सकारात्मकता है उसमें डाल सकेंगे, जो भगवान की शिक्षा है वो उसमें फिर डाल सकते हैं। जैसे हम पर्वत चढ़ रहे हैं, जैसे लास्ट ईयर में चारधाम यात्रा में गया था, तो जो यमुनोत्री है या केदारनाथ है, तो चढ़ते समय मतलब जितना कम होना चाहिए, वस्त्र भी हो, कुछ भी, कुछ नहीं, जितना हल्का हो जाए, मतलब कुछ कुछ लोग तो खाते भी नहीं थे, पेट में भी ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, तो हम हल्का होना चाहते हैं, कुछ भोजन ही होना चाहिए, फिर हम ऊपर चढ़ सकेंगे। तो उसी ऊपर मन के ऊपर भी काम क्रोध लोभ मोहादि जो बोझ है वो अगर नहीं रहे, तो हम जो भगवत धाम का जो मार्ग है वो क्रमित कर सकते हैं। तो बहुत सारी नकारात्मकता है, अलग अलग लोगों के प्रति हमारी नकारात्मकताएं रहती हैं, बराबर, बहुत सारी, किसी लोगों से हम द्वेष करते हैं, किसी से मत्सर करते हैं, कभी कभी हमारा मन मतलब सोचते रहता है उसे ये मिला, इसे ये मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, जो कुछ मिलता है अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। तो हमारा वो जो निरागस मन, जैसे बच्चे जैसा रहता है, बच्चे कैसे निरागस होते हैं, वो निरागसता उसकी, जैसे लास्ट कार्तिक में मैं वृंदावन गया था, और लौटते समय 11 बजे की ट्रेन सुबह 4 बजे आएगी ऐसा अनाउंसमेंट हुआ, तो मन इतना विचलित हुआ कि अभी क्या करें। लेकिन वही मेरे साथ मेरी दो लड़कियां थी, जानकी शची, तो उसमें वो जो सीढ़ी रहती है ना, इलेक्ट्रिक सीढ़ी, तो बहुत अच्छे से मजे ले रहे थे उसके ऊपर, पूरा वो जाते थे, बटन चालू करते थे, उसके ऊपर कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी, कुछ नहीं, चढ़ते थे, उतरते थे, फिर सोते थे, कुछ खाने के लिए का देखते थे, उसको उनको कोई चिंता नहीं रहती थी। तो क्या वो निरागस्त है, जो परिस्थिति है उसमें आनंद ले रहे थे, क्योंकि वो निरागस्ता है। जैसे मैं अपने बच्चों के स्टूडेंट्स के साथ बहुत बार चर्चा बच्चों के बारे में कहता रहता था, जैसे मेरे क्लास में एक बार बच्चे एक दूसरे से बात नहीं करते थे, तो मैंने उनको एक कथा सुनाई कि एक जो एक टीचर ने उनके बच्चों के लिए की थी, कि जैसे क्लास में पूछा, आपका किसी किसी से जमता नहीं, भक्त समाज में भी होता है कि ये एडीओटी से मेरा नहीं जमेगा, उससे नहीं जमेगा, ऐसा होता है, बहुत बार होता है, तो हम दूर रहते हैं। तो वैसे क्लास में टीचर ने कहा, आपका कितने मित्रों के साथ नहीं जमता, तो किसी ने बोला 2, किसी ने बोला 4, किसी ने बोला 5, किसी ने बोला 10, तो फिर टीचर उनको बताती है कि फिर जितनों से आपका जमता नहीं ना, उतने उबाले हुए आलू आप लेके आइए। तो ठीक है, मतलब बच्चे छोटे बच्चे होते हैं और टीचर का हमेशा सुनते हैं, तो उबाले हुए आलू लेके आते हैं, फिर अभी बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्या करने का, इस आलुओं का करना क्या है, तो टीचर खाली उनसे बोलते, रखो अपने पास रखो, फिर शाम होती है, अभी तो क्या करें, अभी तो थोड़ा वो सड़ने लगा है क्या, नहीं नहीं अभी आपके पास रखो, खाली रखो, फिर दूसरे दिन फिर लेके आओ, फिर तो उसका इतना बदबू, मतलब बासी हो गए थे, फिर टीचर को पूछते, अभी क्या करें, हम इनके साथ रह नहीं सकते, बच्चे बोलने लगे, तो फिर टीचर उनको बताते हैं कि इसी तरह आपके मन के अंदर जो बासीपन है एक दूसरे के प्रति, मत्सर, तिरस्कार, द्वेष है, अगर ये अभी इसको फेंकना है आपको, तभी आप शांति से जी पाओगे। वैसे ही अगर भक्त करके हमें अगर जीवन यापन करना है, तो जैसे कंप्यूटर खोलने के लिए पासवर्ड है ना, तो उसी तरह से पासवर्ड गीता में भी अलग अलग पासवर्ड है, तो वैसे भगवान ने एक पासवर्ड दिया है, अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च, ये जो पासवर्ड है, निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखक्षमी। तो अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण, सर्व जीवों के प्रति अद्वैष्टा रहना है, तो बहुत बहुत कठिन पासवर्ड है, कोई भी पासवर्ड क्रैक किया जा सकता है, लेकिन सभी जीवों के प्रति अद्वैष्टा रहना ये बहुत कठिन है, कठिन है। जो बच्चों के लिए जैसे आसान रहता है, बहुत आसान रहता है, कोई भी चीज़ है वो सरलता से स्वीकारना, मतलब एक स्कूल में एक नाटिका का आयोजन किया था, तो सबको अलग अलग रोल दिए गए थे, हालांकि आधा घंटे का रोल था, तो एक बच्चा माँ की परवानगी लेते हुए वो नाटिका में सम्मिलित होता था, आता था, और जब वास्तविक में नाटिका हुई तो माँ ने देखा, कह रहे मेरा बेटा तो कोई भूमिका में है ही नहीं, फिर रोज वो प्रैक्टिस के लिए क्यों जाता था, वो क्या प्रैक्टिस करता था, तो फिर वो माता को एक्सप्लेनेशन देता है, नहीं नहीं सबको क्या था, 5-5 मिनट की, 2-2 मिनट की भूमिकाएं थी, लेकिन मेरे मैडम ने मुझे बताया था कि हर 5 मिनट में तालियां बजाने का, क्या तो मुझे सबसे ज्यादा रोल था, आधे घंटे का रोल खाली मुझे ही था, क्या हर 5 मिनट में तालियां बजाना, हालांकि वैसे देखा जाए तो मेरा कोई सहभागी नहीं है। तो उसको दिया था टीचर ने, वैसे ही हमारे कर्मानुसार हमारे क्षमतानुसार भगवान हमें अपना अपना रोल देते हैं, लेकिन हम दूसरों का रोल देखते हुए हमारा रोल खराब करते हैं। जैसे बच्चा वो नहीं कर रहा था, वो आनंद ले रहा था, वो तालियां बजा रहा था, तो हमें हमारा रोल समझना है। जो भी कुछ हमारे जीवन में भगवान के रूप से मिला है उसे मन को अगर ठीक करना है तो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेप्ट ग्रेसफुली, जो भी मिला है उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है। मतलब जैसे हम हमेशा अपना बैंक बैलेंस चेक करते रहते हैं, अभी कोई भी हमारा अगर गूगल का जीपे का या फोनपे का ट्रांजैक्शन हुआ तो तुरंत हम देखते हैं सही हुआ कि नहीं हुआ है, थोड़ा सा बैलेंस फिर रीचेक करते हैं। लेकिन हम हमारा मन का बैलेंस, हमारा ब्रेन का बैलेंस बहुत कम बार है चेक करते हैं। मतलब हम सभी जगह बिजनेस मैनेजमेंट तो सिखाया जाता है, लेकिन शास्त्र गीता भागवत एक ऐसा है जहाँ हमें बिहेवियर मैनेजमेंट सिखाया जाता है, जो हालांकि गीता में अर्जुन को भगवान ने सिखाया, जिसकी वजह से फिर उसका शोक दूर हो गया। तो इस तरह से हमें इस मन को ठीक करना है, यही शिक्षा श्रील प्रभुपाद जी हमें तात्पर्य में दे रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बता रहे हैं कि हमें अपने मन को पूर्णतया कृष्ण भावना भावित कार्यों में लगाना चाहिए, तब हम यह हमारे लिए मुक्ति का और परम धाम वापस जाने का कारण बन जाएगा, अन्यथा हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इस मर्त्य संसार में घूमते रहेंगे। तो इस तरह से हमारा जीवन यापन करते हुए हमारा जो मन का एल्बम है उसको अच्छी तरह से सजाना है। जैसे हमने सुवृत्त वृत्त की कथा सुनी, जैसे हम अगर हमारा कोई एल्बम है जिसे बनाते हैं तो अगर हमारे मानो तीन तस्वीरें, एक ऐसी तस्वीर है जिसमें हम नहीं है, एक ऐसी तस्वीर है जिसमें हम हमारे मित्रों के साथ हैं लेकिन हमारी सूरत ठीक नहीं है, और एक ऐसी तस्वीर है कि जिसमें हमारे मित्र भी आनंदित है प्रफुल्लित है और हम खुद भी प्रफुल्लित हैं, तो हम किसको फ्रेम करेंगे, किसको एल्बम में रखेंगे? हाँ, तीसरी फ्रेम को। तो उसी तरह से, क्योंकि वो हमारा प्लेजेंट एक्सपीरियंस है, ये हमारी हस्ती और खुशहाल ऐसी सूरत है तो उसको रखेंगे। तो उसी तरह से हमारा मन का एल्बम में इस कृष्ण भावना भावित तस्वीरों से उसको भरना है। जगन्नाथ कथा के बारे में हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे अंतकाल में अगर हमने वो रस्सी खींची है तो वो तस्वीर आके हमारे सामने स्टॉप हो जाती है। तो ये मन में इसी तरह का तस्वीर है, अगर हमने उसमें उस एल्बम में हमने अगर उनको संवारा तो हमारा जीवन, क्योंकि वैसे देखा जाए तो जैसे ट्रैफिक जाम होता है तो क्या होता है, कोई ठीक नहीं होता, तो फिर ट्रैफिक पुलिस आता है। तो इसी तरह से आज की तारीख में हम हमारे मन बुद्धि और अहंकार के ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। तो अगर बुद्धि का ट्रैफिक जाम है तो हमें भगवान ने शास्त्र दिए हैं, मन का ट्रैफिक जाम है तो भगवान की कथा है, भगवान का नाम है। जैसे भगवान खुद नारद मुनि को एक ब्रह्मवैवर्त में पुराण में बताते हैं, शतजन्म तपह पूता जन्मेदम भारतम लभेत करोति जन्म सफलम श्रुत्वा हरि कथामृतम, कि बहुत पुण्यशाली जीवात्माओं को भारत भूमि में जन्म मिलता है। शतजन्म तपह पूता जन्मेदम भारतम लभेत करोति जन्म सफलम श्रुत्वा हरि कथामृतम, अगर ये जन्म सफल करना है तो आपको क्या करना है, श्रुत्वा हरि कथामृतम। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें नियमित रूप से भागवत का पाठ दिया है जहाँ हम कथा श्रवण कर पाए। और जो मन बुद्धि और अहंकार के ट्रैफिक के बारे में हम बता रहे थे, तो अहंकार की वजह से अगर हमारा ट्रैफिक जाम हुआ है तो उसको भगवान की कृपा से हमें जो भी सेवा मिली है, जो भी सेवा मिली है उसे निस्वार्थ भाव से करना है। तो इस तरह से हमारा ट्रैफिक जाम हम दूर कर सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में सुंदर वर्णन आता है जहाँ कहते हैं कि धरे आया कर सदा कृष्ण संकीर्तना, एक बार, धरे आया कर सदा कृष्ण संकीर्तना कृष्ण नाम कृष्ण कथा कृष्ण आराधना। तो यह उपदेश सरल है कि हमें हमारा जीवन यापन जिसमें कृष्ण नाम कृष्ण कथा कृष्ण आराधन ये सब करके हमारे मन को तृप्त करना है। जैसे मन विषयासक्त होता है, एडिक्ट होता है कोई कोई चीज़ों से, तो हमें भी मतलब एडिक्शन रहते हैं, अलग अलग एडिक्शन रहते हैं। तो हम हर साल जब गुरुकुल का प्रारंभ करते थे तो बच्चों को हम एक सुभाषित पढ़ाते थे जिसमें व्यसनों के बारे में बताया। व्यसनाधीनता तो जरूरी है, लेकिन अलग सारे व्यसन रहते हैं, लेकिन हमें कौन सी व्यसनाधीनता का आग्रह करना चाहिए। तो एक सुंदर सुभाषित है जिसमें कहते हैं, व्यसनानि सन्ति बहूनि व्यसनद्वयमेव केवलं व्यसनं विद्याभ्यसनं व्यसनं अथवा हरिपादसेवनं व्यसनं। व्यसनानि सन्ति बहूनि, अलग अलग व्यसन होते हैं लोगों को। व्यसनानि सन्ति बहूनि, व्यसनद्वयमेव केवलं, दो प्रकार के लेकिन होने चाहिए। विद्याभ्यसनम व्यसनम, विद्याभ्यसनम व्यसनम मतलब जो भगवान ने दिए हुए शास्त्र है वो पढ़ना, और हरिपाद सेवनम व्यसनम, हरिपाद सेवनम व्यसनम, तो ये होना चाहिए। तो इस तरह से हम इस सारे व्यसनों को हमारे मन को लगाएंगे। जैसे हम इंद्रिय तृप्ति में लगाने से अच्छा है कि हरिपाद सेवनम, हरिकथा सेवनम, इसमें अगर लगाएंगे तो हमारा मन जो है हमारा परम मित्र बन जाएगा। तो समय की समाप्ति हुई है, नहीं तो मुझे याद आया था तुकाराम महाराज हमारे इंद्रियों के लिए कुछ बताते हैं मराठी में बहुत अच्छी तरह से, कि हमारे जो इंद्रियां हैं जो मन की लगाम से बंधे हुए हैं, तो इंद्रियों के किस तरह से सेवा में लगाना है। तो मुंह के बारे में बोलते हैं कि घेई घेई माझे वाचे गोड़ नाम विठोबाचे, मतलब मेरी वाचा से मुझे भगवान का नाम लेना है। डोले तुम्ही घ्यारे सुख पहा विठोबाचे मुख, मतलब भगवान जो आंखें हैं भगवान का सुंदर विग्रह देखने के लिए लगाने हैं। तुम्ही ऐकारे कान माझा विठोबाचे गुण, मतलब कानों को भगवान की कथा श्रवण करने में लगाना चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए वो भी बताते। पापाची वासना नको माझा डोला, मतलब हमें पाप की वासना दृष्टि से कोई चीज नहीं देखना चाहिए। निंदेचे श्रवण नको माझा कानी, किसी की निंदा नहीं सुनना चाहिए। परनिंदा अपवित्र वाणी नको माझा मुखी, मुझे कोई भी अपवित्र वाणी हो मेरे मुख में नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आज की इस कक्षा में हमने देखा कि किस तरह से हमारा जो रियल सेल्फ है वो मन नहीं है, हम उससे परे हैं। और फिर मन क्या है, भगवान की एक जो 8 प्राकृतिक शक्ति है उसमें से एक है और बहुत शक्तिशाली है। और पद्म पुराण से जो हमने कथा सुनी कि कैसे इस मन की कारण से भगवत धाम का मार्ग सुकर हुआ, और फिर हमें अगर ये मार्ग अच्छी तरह से बनाना है तो हमारा मन हेल्दी होना चाहिए। उसके लिए हमने बच्चों के उदाहरण से देखा वो कैसे निरागस्ता से जो परिस्थिति है वो स्वीकार करते हैं। तो हमने देखा कि जो भी कुछ मिला है हमारे कर्मों से उसे एक्सेप्ट ग्रेसफुली, एंड आखिर में हमने देखा कि जो हमारा ट्रैफिक जाम रहता है मन बुद्धि अहंकार का, उसको शास्त्र कथा कीर्तन और निस्वार्थ सेवा से उसको दूर करना है। इसके लिए चैतन्य चरितामृत का हमने देखा कि कृष्ण नाम कृष्ण कथा कृष्ण आराधना, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, फिर से अभी सभी के आशीर्वाद की अपेक्षा करते हुए यहाँ आज की कक्षा को विराम देते हैं। श्रीमद्भागवतम की।